प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब दुनिया में मोटे लोगों की संख्या अंडरवेट या सामान्य से कम वजन रखने वालों की संख्या से ज्यादा है। इस रिपोर्ट में समीक्षा के लिए 186 देशों में से करीब 1,92,00,000 लोग शामिल थे, जिसमें 99,00,000 पुरुष और 93,00,000 महिलाएं थी। ये डेटा 1975 से लेकर 2014 तक का था। इस रिपोर्ट के अनुसार मोटे लोगों की संख्या 1975 में 10,05,00,000 लोगों से 2014 में 64,10,00,000 तक पहुंच गई। अगर भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ मोटी महिलाएं और 98,00,000 मोटे पुरुष हैं। इस रिपोर्ट में मोटापे का माप बॉडी मास इंडेक्स से लिया गया है, लेकिन दूसरी ओर अगर अंडरवेट या सामान्य से कम वजन वाले लोगों की संख्या की बात करें तो उसमें भारत पहले नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10,20,00,000 पुरुष और 10,10,00,000 महिलाएं सामान्य से कम वजन की हैं। चीन कम वजन वाले लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर है। वहीं अगर सबसे मोटे लोगों की संख्या की बात करें तो चीन महिला और पुरुष दोनों की संख्या में पहले नंबर पर है। वहीं भारत पुरुषों में 5वें नंबर पर और महिलाओं में 3रे नंबर पर है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पुरुष और महिलाएं दोनों में ही जनसंख्या की 25% से ऊपर आबादी मोटी है। हमने भारत में जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा से बात की और पूछा कि मोटापे के क्या कारण होते हैं।
देखिए, ओबेसिटी दो तरह की होती है। एक तो है जिसमें ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या कोई मेजर हार्मोनल मेजर डिसऑर्डर हो, और इस तरह की ओबेसिटी कम होती है। 95% ओबेसिटी होती है क्योंकि जो हमारा खाना पीना है उसमें जो कंटेंट है खाने का, जैसे मिसाल के तौर पे तला हुआ खाना बहुत ज्यादा है या नमक और चीनी वाला खाना बहुत ज्यादा है, तो शायद हम खाना उतना ही खा रहे हों। जैसे लोग कहते हैं कि हम दो ही रोटी खाते हैं, हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो दो रोटी तो ठीक है मगर साथ में मीठा बहुत खाया जा रहा है, तला हुआ बहुत खाया जा रहा है। और इंडिया में एक प्रचलन है कि शाम के टाइम कोई नमकीन, जिसको हम कहते हैं फ्राइड स्नैक, वो खाया जाता है। हर घर में ये काफी डब्बे पैकेट अवेलेबल रहते हैं, तो आमतौर पर जब भी लोगों को भूख लगती है वो हेल्दी स्नैक खाने के बजाय ये तला हुआ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वेट उनका बढ़ता रहता है। दूसरा बड़ा कारण है कि जो शहर है, खासकर न्यू दिल्ली बॉम्बे से बड़े शहर जो है, वहां पे पार्क या एक्सरसाइज करने की जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है, तो इससे सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, इसी का कारण है कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में तो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी हमारा जेनेटिक इस तरीके का है कि हमें डायबिटीज का जो चांसेस है वो ज्यादा है। तो इंडियंस आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू डायबिटीज, यानी इंडियंस में डायबिटीज ज्यादा होती है। तो जब ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों मिलकर होती है तब हार्ट अटैक भी ज्यादा होना शुरू होता है। दूसरी जो बड़ी समस्या है, जो और भी बड़ी मैं मानूंगी और गंभीर मानूंगी, वो है कि बच्चों में जो ओबेसिटी है उसकी वजह से उनका जो बोन स्ट्रक्चर है, उनकी हड्डियां हैं, उस पर बहुत जोर पड़ता है, हड्डियों का डेवलपमेंट नहीं होता। जो लड़कियां हैं उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से आगे जाके उनको सीवियर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी। तीसरी बड़ी समस्या है कि यंग एज पे जब बॉडी डेवलप कर रही हो, जब उसका विकास हो रहा हो, उस समय जब ओबेसिटी होती है तो लाइफ लॉन्ग उसकी साइड इफेक्ट्स इन द शेप ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एंड इनफर्टिलिटी नजर आती है। जी देखिए, ओबेसिटी का तो जो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है वो आपके खाने पीने से होता है, मगर एक बहुत जो पैराडॉक्सिकली इम्पोर्टेंट कोरिलेशन है वो स्ट्रेस से है। जो मिडिल एज में ओबेसिटी होती है वो तनाव के कारण होती है, और तनाव से जूझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एक्सरसाइज, क्योंकि तनाव को और कोई तरीका है ही नहीं, आप उसको डील कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज एक तरीका है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को और अपनी बॉडी की मसल्स को एक्टिव रख सकते हैं, जिससे कि यू कैन कोप विद ओबेसिटी, और जो कि एक बिंज ईटिंग बिहेवियर है, जो स्ट्रेस ईटिंग बिहेवियर इसको हम कहते हैं। तो और इसी तरीके से बच्चों में भी जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको जो स्ट्रेस ईटिंग या बैड ईटिंग पैटर्न में वो नहीं जाते।
डॉक्टर शिखा शर्मा ने भारत में बच्चों के मोटापे की समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
देखिए, माता पिता का एक बहुत अहम रोल होता है बच्चों के हेल्थ पे। मिसाल के तौर पे अगर माता पिता खुद घर में एरिएटेड ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक और फास्ट फूड लाएंगे तो वो बच्चे को फिर अगर बाद में मना भी करे खाने के लिए तो वो एक मिक्स मैसेज जाता है, क्योंकि बच्चे सीखते हैं देखने से, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो बच्चों को आप डांटे कि मत खाओ और पेरेंट्स खुद खा रहे हैं या घर में ला रहे हैं, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज बच्चों को जाता है। तो एक तो आई थिंक पेरेंट्स शुड सेट द राइट ट्रेंड बाय घर में सही तरीका का फूड स्टफ लाएं। दूसरी चीज आई थिंक स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे 5 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं। स्कूल में ओबेसिटी मैनेजमेंट को एक नेगेटिव वे में ना लेके एक उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेट क्या होता है, कैसे बढ़ता है, और एक ये बारे इसके बारे में अवेयरनेस बच्चों को लाना चाहिए, ताकि लोग उसे एक टॉन्ट ना करें या जो मोटा बच्चा है उसको छेड़े ना। दूसरा उनके कैरिकुलम में ही एक्सरसाइज बिल्ट इन होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे दिन में एक ही क्लास एक्सरसाइज की होगी तो बच्चे फिर नेचुरली सेडेंटरी हो जाएंगे। तो कम से कम दिन में 2 घंटे की एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल डे होनी चाहिए, सुबह हो गया शाम को हो गया, ताकि बच्चों को एक एक रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज खेलते खेलते मिले। दूसरी चीज जो बच्चों के स्कूल के कैफेटेरिया है, कई स्कूल में अभी भी कैफेटेरिया में आपको उस तरीके का खाना पीना मिलेगा जो सही नहीं है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि कैफेटेरिया का खाना बहुत सही होना चाहिए। तीसरी चीज प्ले किट सॉन्ग पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये एक बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग और यू नो फन वे है इस मैसेज को आगे तक बढ़ाने के लिए बच्चों को, दैट दे अंडरस्टैंड ओबेसिटी इन टोटैलिटी।
हमने सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पालेवाल और ताबर नामक गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़े हुए रमेश पालेवाल से पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत में लोगों को खाने की कमी ना हो।
अभी भी स्थिति तो ऐसा है कि इंडिया में गरीबी को लेकर के वाकई में बहुत ऐसी गरीबी है, जो राजस्थान में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे ही भुखमरी से लोग मरते हैं, बच्चों की स्थिति बताऊं तो वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलता हुआ आर्थिक और सामाजिक स्वरूप है उसमें अभी भी जो गरीब लोग हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी कमी मिली है, वही है कि उनको अभी खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी है वो बेसिक अभी कम्प्लीट नहीं है। मैं गांव में अभी भी जाता हूँ तो वहां पर अभी भी बच्चों की स्थिति उनको बेकार, खाने को बिल्कुल जो हम कहते हैं गांव का देश है इंडिया, तो वहां पर अभी दूध नहीं मिलता जबकि दूध गाँव से आता है। दूसरी चीज महंगाई और क्या नाम से जो आजकल जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग जो है एक्सपेंसिव है, वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो जो इस तरह का खाना मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। तीसरी चीज मैं जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो चीजें है अपॉर्चुनिटीज है वो अमीर लोगों के लिए बन रही है, मिडिल क्लास के लिए बन रही है, गरीब लोग अभी भी, क्योंकि गरीब लोग मुझे लगता है बहुत ज्यादा 50-60% होंगे इंडिया में अभी भी है इतने, तो उनके पास अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस तरह से राशन पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है जैसे नरेगा स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी, इस तरह का राशन के जो भंडार है उनकी कालाबाजारी रोक करके और हर आदमी तक ये खाना पहुंचे जो सरकार इसके द्वारा ही पहुंचाती, गेहूं अनाज वगैरह जो है वो पहुंच नहीं पाता, ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है इस तरह से, ये मुझे लगता है इसको इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो पहुंच पाए। उससे बढ़िया कोई मुझे लगता है रास्ता है नहीं। और जो किसान खेती करते हैं वहां पे जो जिन गांव से वहां के लोगों को मुझे लगता है सरकार अगर वहीं की वहीं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करे इन राशन को इतना ज्यादा प्रमोट करने के साथ साथ, तो मुझे लगता है काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं।